ओम शांति। हमारे बीच में माया मैडम है, ये चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड, लगभग 40 से भी अधिक वर्ष तक उत्तराखंड में हल्द्वानी वहाँ पर अपनी सेवाएं दी है और अभी हॉस्पिटल में आए हैं कुछ एक या दो हफ्तों से। हॉस्पिटल में जो भी नर्सिंग सर्विसेज है उनको किस तरह इम्प्रूव की जाए, उनमें क्या क्या चेंजेस लाए जाए उसके विषय में, क्योंकि इनके पास जैसे मैंने कहा 40 साल से भी अधिक ज़्यादा अनुभव नर्सिंग का है। तो आज माया मैडम हमको मम्मा के विषय में कुछ बताएंगे। जगदम्बा सरस्वती एज वर्ल्ड मदर, ओम शांति।
ओम शांति। सचिन भाई जी वाकई बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने इतना सब कुछ बोला। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उन्होंने कहा कि सब सिंसियरली देखें कि हम सब आत्माएं हैं, हम कोई मेल फीमेल या कोई पोजीशन पद से नहीं हैं, तो हम सब क्या हुए आपस में भाई भाई, हमें हमेशा सोल कॉन्शियस रहना, बॉडी कॉन्शियस नहीं। तो क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छाइयाँ ही देखते हैं और वही छप जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं। रोज भाई लोग इसी बारे में रोज एक क्लास होती है, बहुत अच्छी बात है, रिपीट भी होता है, हम कई बार कोई चीज़ पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, बार बार ये लगता है कि हमें याद हो गया। तो मम्मा के बारे में जो अब तक क्लासेस चल रही हैं उसमें से जितने भी पॉइंट्स आते हैं कम से कम दो एक पॉइंट्स हमें रोज अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए और उसे फॉलो भी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो मम्मा के विषय में मुझे जो टॉपिक दिया था सचिन भाई जी ने वो था मम्मा एज अ मदर, वर्ल्ड मदर। तो मम्मा के जब शिव बाबा ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा बाबा के मुख से सबसे प्रथम रचना मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ ही थी। उस वक्त बाबा ने अपना जो सारी संपत्ति थी उससे माताओं और बहनों की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को विल कर दिया था और मम्मा के जो अब तक सारे गुण और विशेषताएं आप लोगों ने बराबर डेली सुनी हैं वो सारी विशेषताओं को गुणों को देखते हुए बाबा ने उस जो कमेटी थी यज्ञवत्सों की पालना के लिए और माताओं बहनों के लिए, तो उसके लिए मम्मा को नियुक्त किया, मम्मा को उनका हेड नियुक्त कर दिया। और मम्मा के अंदर तो ये क्वालिटी थी ही, और जब पहले से इतनी क्वालिटी होने के बाद और आश्रम आने के बाद बाबा के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा में जो उनके शब्द निकले कि बाबा मिल गया, और ऐसे ही बाबा के मुंह से निकला राधे माँ, अनुराधे यानी लक्ष्मी। तो मम्मा को जब हेड बनाया गया, मम्मा भले ही उम्र में बहुत छोटी थी लेकिन जब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई उन्हें उनके गुणों को क्वालिटीज को सिंसियरिटी ईमानदारी सब कुछ देखते हुए तो उनके अंदर और भी जितने गुण थे एक एडमिनिस्ट्रेटर के और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के हिसाब से जो उन्हें हेड बनाया वो गुण उतनी छोटी उम्र में स्वतः आते गए और मम्मा अपने पुरुषार्थ से ही मम्मा बन गई। इतना उनमें तपस्वी भाव था, तन मन से सेवा करती थी और ज्ञान योग धारणा सेवा सब में नंबर वन थी। मम्मा 2 बजे रात उठकर छत पर जाती थी, एकांत में उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनको स्वयं पर विश्वास था, बाबा पर विश्वास था और ड्रामा पर, जैसा कि अभी आपने उदाहरण सुन ही लिया। इसी तरह मम्मा के सफल जीवन के वो 5 मंत्र बताती हैं। एक तो ब्रह्मा मुख से जब मुरली चलती है तो हमारे कानों तक पहुंचने में जो बीच का डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, उसमें माया कहीं भी प्रवेश कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस गैप को भरने के लिए आप डायरेक्ट रूहानी दृष्टि से रूहानी स्थिति में स्थित रह करके बाबा की मुरली सुनो और इतने रूहानी स्थिति में डायरेक्ट मन और बुद्धि को उससे जोड़ दो कि बीच में माया को आने का कहीं से कोई चांस ना मिले और पूरी मुरली आप ध्यान से सुन सकें और आपके अंदर धारणा भी हो उसके अंदर। मम्मा मुरली सुनती थी, जानकी दादी बताती हैं कि मम्मा मुरली को केवल सुनती नहीं थी, वो इतना ऑब्जर्व करती थी, इतना धारण करती थी कि उसके ऊपर मनन चिंतन, गहन मनन चिंतन, एकांतवासी तो थी ही, और फिर उसके ऊपर चिंतन करके फिर उसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती थी, उसी रूप में रहती थी। और वैसा ही बच्चों को भी कहती थी, वो तो ज्ञान की देवी थी, इसीलिए सबको ज्ञान देना और सारे बच्चों को देखभाल करना, जो काम उनको सौंपा गया उसे सिंसियरली करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही दूसरा उनका था कि कभी भी श्रीमत पर मनमत नहीं मिलानी है, परमात्मा जो श्रीमत दे रहा है हमें उसको एज इट इज धारण करना है, उसमें कोई भी बहानेबाजी या मनमत नहीं मिलानी है। इसके अलावा किसी भी बात को मम्मा कहती थी वातावरण नहीं बनाना है, हम कहते हैं ना बात को खींच दिया, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, क्योंकि उनके ऊपर पूरे परिवार यज्ञ वत्सों की कन्याओं की माताओं की जिम्मेदारी थी। तो कई बार, एक बार गंगे दादी बोलती हैं उनके अंदर क्षमा भाव इतना था कि वो अगर कोई बहनें आपस में शिकायत उनके पास लेकर जाती थी तो वो उन्हें एक एक करके अपने पास बुलाती थी और उन्हें समझाती थी कि देखो तुम्हारे बीच में ऐसी कोई भावना पैदा नहीं होनी चाहिए, वो बहन तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बोलती है, उसके दिल में ऐसा कोई भाव नहीं है जो आप उनके लिए समझ रहे हैं। तो ऐसे दो दिलों के बीच की दूरी को हटा देती थी और आपस में सबको मेल जोल करके रखती थी। इसी तरह मम्मा ने तीसरा ये कहा कि हमारा जो जीवन है, जैसे कहते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, तो ऐसे ही हमारा लाइफ जो है वो बिल्कुल जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा लिफाफे की तरह, बंद लिफाफे की तरह नहीं, पोस्ट कार्ड की तरह होना चाहिए। तो ये भी उन्होंने बताया कि यानी अंदर बाहर हमें समान होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर हम कुछ कह रहे हैं अंदर से कुछ और। तो हमें मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा। इसके अलावा कोई भी हम कर्म करते हैं उसमें हाजी का, मम्मा हमेशा हाजी का पाठ बजाती थी ना, बाबा ने जो कहा और मम्मा ने सुना और किया, सुनाई ने किया। इसीलिए मम्मा कहती हैं कि हमेशा बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं या जो हम मुरली पढ़ रहे हैं उसमें जो भी बातें बाबा ने कही हैं हमें उसे धारण करना है और उसी के अनुसार चलना भी है। मेहनत लगेगी, समय लगेगा, 63 जन्मों के जो संस्कार हैं उससे ज्यादा समय चाहिए मिटाने के लिए, लेकिन बाबा बार बार बोलते हैं समय बहुत कम है, अंतिम घड़ी सामने है, तो उतना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्योंकि समय को देखते हुए। तो इसलिए मम्मा कहती जो ना करता ना किसी भी काम के लिए तो वो क्या है, नास्तिक है। एक बार अब मम्मा के अंदर इतना मातृत्व भाव था कि इतनी छोटी उम्र में यशोदा माँ भी उनको मम्मा कहती थी और उनकी जो खुद की मदर थी वो भी उन्हें मम्मा कहती थी, रोचा वो भी उनको क्या कहती थी, मम्मा, क्योंकि उनके अंदर मातृत्व शक्ति थी। बाकी सारे गुण फिर रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि रोज यही सब चल रहा है। उन गुणों के अलावा उनके अंदर मातृत्व का इतना शक्ति थी, इतना स्नेह भाव था। निर्भय भाई बताते हैं कि वो मम्मा के सामने झिझकते थे जाने में, तो एक बार मम्मा ने उन्हें देखा बैठे हुए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गई और खाने पर उन्हें बैठाया और बड़े प्यार से सबसे पहले उनको गिट्टी खिलाई। तो निर्भय भाई बोलते हैं कि मैं उसी समय उनसे जो दृष्टि मिली और जो प्यार मिला माँ का उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ऐसा मातृत्व भाव था, जो भी उन्हें देखता था उसके अंदर उनको माँ का स्वरूप दिखाई देता था। वो जगत अम्बा इसीलिए कह रहे हैं, वर्ल्ड मदर, सारे संसार की जननी, क्योंकि उनसे जब भी कोई भी मिलता था, कोई विकारी भी, अगर बहुत विकारी भी कोई आता था उनके सामने, तो वो भी उनके अंदर से, उनकी दृष्टि से उसे लगता था कोई महान शक्ति, कोई दिव्य शक्ति प्रकाश दे रही है, दृष्टि दे रही है, और वो बिल्कुल शांत हो जाता था। इतना शांत स्वरूप थी, सारे गुण थे उन्हें, पवित्रता, शांति, प्योरिटी, पीस, जो भी सब कुछ सारे गुण मामा में थे। तो उन गुणों के खाते माँ जो भी सामने आता उसको माँ के वाइब्रेशंस लगते थे कि माँ से वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, ऐसी मातृ शक्ति थी उनमें। एक बार, और उनके अंदर सेवा का भाव इतना था, एक बार दादी पुष्पा दादी थी, उनको गंगे दादी को, उनको रात में स्वास्थ्य खराब हो गया था और 30 बार वॉशरूम जाना पड़ा क्योंकि उनको डायरिया ऐसी कोई कंप्लेन हो गई थी। तो लास्ट में जब वो गिर पड़ी बेहोश होकर, तो बाबा ने मम्मा को बुलाया कि आपको इसकी देखभाल करनी है। मम्मा कभी ना तो कह ही नहीं सकती थी, मम्मा ने हाँ जी का पाठ किया और उनको हर घंटे उन्हें 2 चम्मच पानी पिलाने के लिए कहा गया। मम्मा 3 दिन तक रात दिन उनको पानी, उसके बाद दूध, उसके बाद जो भी दाल वगैरह पिलाती रही। और 4th दिन जब वो थोड़ा सा ठीक हुई तो मम्मा ने 10 बजे, रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक उन्हें अपने सामने बैठाया और ऐसी दृष्टि दी, इतनी पावरफुल दृष्टि दी कि उन्हें लगा कोई दिव्य दृष्टि से मुझे परमात्मा शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। और उनकी आत्मा में इतनी शक्ति भर दी, आत्मा के साथ साथ पूरी बॉडी में वो वाइब्रेशंस जब गए तो वो पूरा पावरफुल होकर, जब सुबह लोग मिले तब उन्होंने पूछा कि इतना शक्ति कहां से आ गई, आप तो इतने दिन से बीमार थे। तब उन्होंने बताया कि मम्मा ने किस तरह दिल से मुझे 3-4 दिन से सेवा दी और रात में दृष्टि दी, उससे मेरे अंदर इतनी पावर आई। तो मम्मा के अंदर इतना मातृत्व भाव था, बाकी तो वो कहती थी करण करावन हर करा रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है, ये सब मम्मा के अंदर क्वालिटीज थी। इसके अलावा वो अचल अडोल तो थी ही, अपनी स्वयं की बहन का उन्होंने अंतिम संस्कार भी किया, फादर थे नहीं, फिर भी उन्होंने स्थिति को कभी डगमग नहीं होने दिया, चाहे वो जज के सामने रही, वहां भी उन्होंने गीता पर हाथ नहीं रखा। इसी तरह कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां मम्मा के अचल अडोल स्थिति का पता चलता है। और जब लास्ट में देखो कितना दुख था उनको, कैंसर से पीड़ित थी लेकिन फिर भी किसी को अपने दुख का एहसास नहीं होने देती थी, इतनी सहन शक्ति थी, परीक्षण की उनको शक्ति तो थी ही लेकिन सहन शक्ति, और दूसरों को ना वो सोचती थी दुख देना है ना दुख लेना है, हमेशा बाबा की याद में रहती थी। तो जिस समय अंतिम घड़ी थी, ये तो कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, लेकिन मुरली पढ़ना नहीं छोड़ा, अंत तक मुरली भी पढ़ती रही, ज्ञान भी देती रही और अचल अडोल स्थिति में रही। कभी किसी परिस्थिति का, किसी भी परिस्थिति का स्वस्थिति में प्रभाव नहीं पड़ने देती थी। और ये कहती भी यही थी कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप परमात्मा से मेडिटेशन करके इतनी शक्ति भर लो कि दूसरी शक्ति, चाहे 5 तत्वों में से कोई भी शक्ति आपके सामने आती है संबंधों की, तो वो आप पर असर ना कर सके। ऐसा ऑरा डेवलप कर लो कि उस ऑरा के अंदर कोई भी दूसरी शक्ति काम ना करे और वो शांत हो जाए। तो मम्मा ने लास्ट में मुरली भी पढ़ी और इतनी पावरफुल दृष्टि सभी बच्चों को दी। इसके अलावा मम्मा को अंगूर बहुत प्रिय थे, सारे बच्चों को उन्होंने बाबा के कहने पर अंगूर भी बांटे जबकि वो बैठ भी नहीं सकती थी। और इस तरह मम्मा ने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम रोज भी पढ़ते हैं तो कभी लगता नहीं कि और पढ़ें, ऐसा लगता है कि जितनी बुक्स हैं सोचते हैं कि और मामा के बारे में पढ़ा जाए और उन्हें फॉलो करा जाए, केवल पढ़ने से नहीं, धारणा भी हो और फॉलो भी करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, उम्मीद करती हूँ मामा को जरूर फॉलो करेंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग, जैसे भी है समय बहुत कम है और हमको तो समय से ही समय निकाल कर समय बचाना ना, और उसी समय का सदुपयोग करना है। ओम शांति।